Bihar.
142 Kennedy Road, Brampton. 905-874-7171.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com QTL ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ
Brampton has a population of over 800,000, but it only has one hospital. The Ontario Liberals created this mess, and under the Conservatives, it's only gotten worse. 3 years ago, Doug Ford promised shovels in the ground. 3 years later, nothing has been done. Doug Ford couldn't get it done, but Merritt Stiles and the Ontario NDP will. My name is Martin Singh, the Ontario NDP candidate in Brampton East. We will invest in healthcare and ensure Brampton has two hospitals.
Authorized by the CFO for the Martin Singh campaign.
Radio Sangoma. Music, news and information. Messages and chit-chat.
ویلکم بیک تمام سامعین کو اور آپ سن رہے ہیں 770 ڈائل پر پروگرام ساز و آواز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور ہمارے ساتھ گرما گرم خبریں لے کر آج نہیں آئی ہیں شازیہ ملک صاحبہ ان کے ساؤنڈ افیکٹ ہی آپ کو سنا دیں گے جناب آپ ابھی ہمیں ڈائل پر سن رہے ہیں 770 AM پر اس کے بعد آپ یہ خبریں مکمل اور اس کے بعد ہمارے آج بھی ایکسپرٹ شامل ہوں گے اس کو سننے کے لیے آپ کو ایک نمبر ڈائل کرنا ہوگا 6478724900 یا ہماری ویب سائٹ eawaz.com اور ہمارا ٹیلی ویژن ای آواز ٹی وی تمام ہی آئی پی ٹی وی باکسز میں موجود ہے آپ وہاں پر بھی ہماری لائیو ٹرانسمیشن 24/7 دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور نمبر کے ساتھ سن سکتے ہیں 6478724900 چلیں جناب ان کو کیا ہوتے ہیں کوئی خبریں سنا دیں گی چار لوگ یہاں مر گئے چار وہاں مر گئے یہ ٹیکس لگا دیا آج تو خیر ان کے بعد ٹرمپ صاحب کی کوئی خبر نہیں ہوگی ٹرمپ صاحب کا ٹویٹر بند ہے آج خاموش ہے ابھی وہ ایک دو دن کے بعد ان کو سمجھ آئے گا کہ ہوا کیا کل جیت ہار ہوتی رہتی ہے کبھی بڑا بھائی جیتتا ہے کبھی چھوٹا بھائی جیتتا ہے لیکن بہرحال ٹرمپ صاحب کی مجھے لگتا ہے کہ آج ان کے پاس خبر نہیں ہوگی کیونکہ میں نے تو کوئی ان کا ٹویٹر آج آگ برساتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ان کے پاس سم ٹائم یہ خود بھی بنا لیتی ہیں تو وہ ٹویٹر ان کا اپنا بھی ہے جس کے اس کو پانچ کرنا ہے دیکھیں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پانچ ایٹ لیسٹ ہم یہ مہم کرتے ہیں اللہ اجر دے گا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اگر ان کے پانچ فالوورز ہو جائیں تو بہت ہی اعلیٰ ہو جائے گا آئیے جناب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اس سے پہلے کہ میرا ایک فالوورز کھا جائیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہزی کیسی ہیں
ڈبلیو ایس ہم ٹھیک ہیں
آپ ٹھیک ہیں
اور نادان نادیا وہ ٹویٹر پہ کم ڈالتے ہیں وہ اپنے ٹروتھ سوشل پہ ڈالتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو وہاں پہ فالو کرتے ہیں تو اس لیے وہ چپ نہیں کرتے ہیں نادان نادیا کب بڑی ہوگی
نہیں آج ان کا ایکس خاموش تھا
ایکس ہی ایکس رہنے دو ان کا وہ جو ٹروتھ سوشل ہے نا وہ بس چلتا رہتا ہے نہیں تم نہیں مانتے نا دنیا ساری اسی کو فالو کرتی ہے ٹرمپ صاحب کو اسی کے اوپر کرتی ہے ملینز ملینز آف ان کے فالوورز
ہم ایکس کو فالو کرتے
ہیں تو بس ایکس میں پھر تم کو کچھ نہیں ملے گا نا
وہ سناٹا سناٹا بات کرتا نا وہ تو جین زی سے بات کرتے ہیں
نہیں نہیں وہ جین زی نہیں ہے وہ ان کا آفیشیل ہے وہ وہاں پہ ان کا آفیشیل ہے ٹروتھ سوشل پہ ان کا آفیشیل جو ہے نا وہ ہے سوشل میڈیا
پہ فائرنگ کیا جنہوں نے
بہت سارے کیے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی
تو
جب آج خبریں ہم شروع کر لیتے ہیں دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی نہ پھٹنے والے کپڑے کون سے ہیں جی اس پہ جائیں بریٹانیا روڈ پہ ہیں آگے ہیں اور بہت زبردست اٹالین وول کے کپڑے ہیں اگر آپ کو خریدنے ہیں آپ ادھر جائیے اگر اچھا کھانا کھانا ہے آ گیا ہے ویکینڈ تو آپ جائیے ہمارے فیصل چٹا صاحب کے پاس ولیج ٹیسٹ پہ دو ریسٹورینٹس ہیں مسز ساگا میں ایک اوکویل میں انجوائے کا مزہ لیں اور جناب راجہ دے بادشاہ جی اگر آپ کو بھی جو ہے وہ عامر کا نام لینا ہے تو پھر آپ کے $1775 جو ہیں وہ بچے گے, لیکن اگر آپ نے میرا نام لیا تو صرف $400 بچے گے. تو اب آپ دیکھ لو کہاں فائدہ ہے, ٹھیک ہے؟ آپ ان کے پاس جاؤ, آل اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کو بہت زبردست قسم کی سویدھائیں دیتے ہیں. اور جناب ہمارے جو ہیں عدنان الوی صاحب لائف ٹائم گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت زبردست آپ کو سروسز دیتے ہیں, آر ای ایس پی, آر ایس پی اور انویسٹمنٹ کے بہت سے چانسز آپ کو بتاتے ہیں, تو آپ ان سے بھی سمپرک کریں. اور اس کے علاوہ کیو ٹی ایل کوئک ٹرک لیو کہتے ہیں جی, ایک طرف سے انٹر ہو ہمارے جو ہے آؤٹ لیٹ میں اور دوسری طرف سے آپ باہر نکل جاؤ یعنی کہ ورک شاپ میں, آپ کے زبردست قسم کے آئل اور سروسنگ 15 منٹ کے اندر کر دیتے ہیں. جیسے ہی نکلو گے آپ امریکہ چلے جاؤ گے, اگر آپ کو جانا نہیں جانا تو ادھر گول گول گھومتے رہو اپنے ملک میں, ٹھیک ہے جی؟ تو دنیا بہت بڑی ہے. اینی ویز تو کوئک ٹرک لیو اس کے آپ پاس جا سکتے ہیں. اور جناب اگر آپ کو دانت اچھے کروانے ہیں یعنی اتنے شارپ کہ کسی کو کچی کاٹو تو بس جو ہے وہ بوٹی نکل جائے, اگر ایسا آپ کو دانت بنانا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا ڈاکٹر نازیہ رحمان کے پاس. ہے جی, ڈاکٹر نازیہ رحمان جو ہے وہ اب نیا ڈینٹسٹری انہوں نے کھول لیا ہے, کہاں پہ؟ رجوے کے اوپر. تو ڈینٹسٹری آن رجوے, پہلے ڈینٹسٹری آن مسز آگا تھے, تو ابھی اس نئے کلینک پہ آپ جا سکتے ہیں. بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے, زبردست قسم کی آپ کو سروسز دیں گے. اینڈ ہمارے ون اینڈ اونلی سلطان بھائی ٹی وی برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ ہوتے ہیں, 801 بوے ڈرائیو ویسٹ, وہاں پہ جائیے, بنڈل ڈیلز آپ کو ملے گے. تو بنڈل ڈیلز پہ آپ بہت اچھے سارے دے سکتے ہیں. اسلم بھائی کے پاس جائیں, پائل جیولرز پہ زبردست, آپ کا کوئی بھی اوکیزن آ رہا ہے تو جیولری کا آپ کو سیٹ مل سکتا ہے یا کوئی چھوٹے موٹے بھی کچھ چیزیں مل سکتے ہیں, تو جو بھی آپ کو دینا آپ جائیے, ٹھیک ہے؟ اوکے جناب, سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پی سی پارٹی جو ہے ابھی بھی 14 points کا ایڈوانٹیج مینٹین کیے ہوئے ہے. اور آپ کو پتا ہی ہے کہ اونٹاریو میں الیکشنز اب نیکسٹ ویک آنے ہی والے ہیں, 27th کو ہے نا, تو بس 27th کو کے لیے بس آپ تیار ہو. تو لبرل پارٹی لیکن جو ہے ٹرونو میں آ گیا ہے, دس از اکارڈنگ ٹو نینوز ریسرچ. 931 لوگوں کا انہوں نے سروے کیا تھا, اس میں سے 45.2% جو ڈیسائیڈ ووٹرز تھے انہوں نے بولا ہم پی سی کو سپورٹ کریں گے, 31.3 نے کہا کہ ہم لبرلز کو, 16.8 این ڈی پی, 5.1% گرینز کو, اور 1.6% نے کہا کسی اور کو ہم دیں گے. اس کے علاوہ جو ڈیسائیڈ اور نان ڈیسائیڈ دونوں کو ملا کے جب انہوں نے سروے نکالا تو ان کو معلوم چلا کہ 14.3% پی سی کو سپورٹ کرتے ہیں, 27.8% لبرلز کو, 14.9% این ڈی پی, 4.6% گرینز, 1.4% این ادر, اور 11% ابھی بھی انڈیسائیڈ ہے. 43.3% ٹرونو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے لبرلز کو, 36.6% پی سی, 15.3% این ڈی پی, 3.9% گرین. لیکن جو جی ٹی اے کا ایریا ہے وہاں پہ پی سی جو ہے 20% سے لیڈ کر رہا ہے, 53.2% اس کو سپورٹ ہے اور 30.7% لبرلز کو ہے. تو میں نے بھی آپ کو بڑے دنوں سے ہی کہا ہوا ہے جب سے یہ سنیپ الیکشن کا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ پی سی پارٹی نہیں جیتنا ہے. ابھی یہ خام کو ایسے خالی پیلی کہے کو آپ اپنا دل جلا رہے ہو. اینی وے آج جناب بڑے بڑے جو ہیں دعوے کیے پھر سے جو الیکشن ٹریل پہ ہیں اونٹاریو میں لوگ, انہوں نے یعنی کہ جو لیڈرز ہیں انہوں نے, لبرل پارٹی نے کہا کہ ہم $65 billion کا اسپینڈنگ کریں گے نیکسٹ 4 years میں اگر ہم جیتے, 28% billion کا ہم ایفیشنسیز, وہی جیسا بول رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ یہ ایفیشنسیز ڈھونڈو, یہ کہاں کہاں پہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہ سب ختم کرو. تو وہی بات کی, کوئی ٹیکسز نہیں لگائیں گے, ٹیکس انکریزز نہیں کریں گے. یہ آج بونی کرومبی نے کہا جب انہوں نے اپنا پلیٹ فارم جو ہے ریلیز کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی 90 new schools, لوور اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اور پروگرامز ہم شروع کریں گے, چاہیے ریڈیوس کریں گے ٹیچرز کا جو ڈرتھ ہو گیا بہت زیادہ, اور ایک فیملی کے لیے ایک ڈاکٹر تو ہونا ہی چاہیے. اس کا کاسٹ آئے گا 29 billion. اس کے علاوہ جو ٹیکس کٹ کریں گے اس کے اوپر $26 billion آئے گے. این ڈی پی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پرومس کر رہا ہے 70 billion نیو اسپینڈنگ ان 3 years, 37 billion ان نیو اینڈ ریونیو سیونگز, جس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم انکریز کریں گے کیپیٹل گینز ٹیکس اور نیو ٹیکس بریکٹ, جو ٹاپ ٹاپ بہت ہی زیادہ ارن کرنے والے لوگ ہیں, لگژری ہاؤس ٹیکس لگائیں گے. مارٹ اسٹائلز نے کہا کہ جی ہم گروسری ریبیٹس دیں گے, ہر فیملی کے پاس ایک ڈاکٹر رہے گا, 300,000 افورڈیبل ہومز جو ہیں وہ بنانے کے لیے ہم پبلک بلڈر جو ہے اس کے ساتھ کام کریں گے, یونیورسل اسکول فوڈ پروگرام, 10.5 billion ہم یوز کریں گے ہیلتھ کیئر پہ ان دا نیکسٹ 3 years, اور آفر کریں گے بہت سارے جو ہے آپ کو پرائمری کیئر کا سروسز. اس کے علاوہ ہوم بلڈنگ پلان جو ہے اس کے اوپر 7.5% 5 billion جو ڈالرز ہے 3 years میں اسپینڈنگ آئے گا, اور جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو گروسری ریبیٹ ہم دیں گے اس پہ 11 billion, अर्निंग्स जो 300,000 और 500,000 पर ईयर के बीच में लोग हैं, उनसे जो हम टैक्स बनाएंगे वो $3 बिलियन पर ईयर रहेगा। इसके अलावा जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि जिसमें के अभी 50% उनको टैक्स किया जाता है, 80% बनाया जाएगा, उससे हम 3.5 बिलियन पर ईयर कमाएंगे। डॉक्टर फोर्ड साहब ने आज कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया है क्योंकि वो आज फिर से दूसरे ट्रिप के ऊपर डीसी में गए हुए हैं। एनडीपी के जो कैंडिडेट हैं एल्गिन मिडिलसेक्स लंदन से, उन्होंने कहा जी मैं रेस में हिस्सा नहीं ले रही हूं। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की ये सोशियोलॉजी की प्रोफेसर है अमांडा जेविट्स, और उनका जो है कमेंट्स आए थे एट वुमेन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन मार्च 2024 का जो प्रेजेंटेशन था उसमें उन्होंने कहा कि मेरा सीक्रेट है कि मैं जो है ब्लैक वुमन बनना चाहती हूं जिसके वजह से मैं विदाउट एनी बैरियर्स अपने आइडियाज शेयर कर सकूंगी। अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा चूंकि बैकलैश आया तो उन्होंने कहा जी कि ये जो बायसेज हैं हमारे सोसाइटी में उसको खत्म करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन अगर मेरे कमेंट्स ने किसी को हर्ट किया और ये हार्मफुल थे उसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूं, लेकिन एज सोशियोलॉजी एंड वुमेन स्टडीज प्रोफेसर मैंने सारी जिंदगी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो है उसके लिए आवाज उठाया। अरब लीडर्स जो है जी आज वो सऊदी अरेबिया में गैदर्ड है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने सबको जमा किया है कि गाजा के सिचुएशन के ऊपर बात करें, और जो ट्रंप साहब का प्लान है उसको आपको पता ही है कि सारे अरब कंट्रीज ने जो है वो खारिज कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि अभी ये एक नया प्लान बनाने की जरूरत है। इसके ऊपर ये सब लोग बैठे हैं, इजिप्ट ऑलरेडी एक नया प्लान दे चुका है, लेकिन अब ये सारे बैठे हुए हैं कि और वाइडर अरब वर्ल्ड इसके बारे में क्या बोलता है। इसके साथ साथ नतन्याहू साहब जो है उन्होंने अपनी आज जो मिलिटेरी उसको फिर से बोल दिया कि जी बिल्कुल ये सारा जो है इंटेंसिव ऑपरेशन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में करें, क्योंकि कल कुछ एक्सप्लोजन्स हुए थे बसेस के ऊपर जो तल अवीव में जा रही थी, कैजुअल्टीज उसमें कोई नहीं हुए थे और किसी ने कुछ रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं लिया था, लेकिन नतन्याहू साहब तो भड़क गए, उनको तो मौका चाहिए कोई ना कोई बात पर भड़कने के, तो आज जनाब फिर से वजह है मारधाड़ फिर से होगी वहां पर वेस्ट बैंक के अंदर। ट्रंप साहब के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइक वॉल्स, उन्होंने ज़ेलेंस्की को बोला है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स का हमारा डील है यूएसए के साथ उसके लिए तुमको हमारे साथ बैठना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की साहब जो है वो माइक वॉल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रंप साहब जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ज़ेलेंस्की साहब के साथ क्योंकि ये टेबल पे आ नहीं रहा है और बात नहीं कर रहा है, और इसके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था हमारे साथ बात करने के लिए लेकिन इसने नहीं किया। इससे पहले यूएस का ऐसा कुछ न्यूज आया था कि जैसे कोई बातचीत जो इनकी है ज़ेलेंस्की के साथ कीव में वो सारी जो है वो कैंसिल कर दी गई है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ तस्वीरें आए थे और कीव ने कहा कि जी ये हम इसमें कुछ डिस्कशन क्या हुआ है वो बोल नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ तस्वीरें दे सकते हैं। तो ये जो एक और ऑफिशियल जिनके साथ ज़ेलेंस्की साहब बैठे हुए नजर आए वो थे अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल कीथ कैलॉग जो हैं यूएस एनवॉय फॉर यूक्रेन जो हैं वो, उनके साथ इनका बातचीत हो रहा था और पिक्चर्स जब सामने आए तो देखा जा रहा था कि दोनों ने हैंडशेक्स किए थे और टेबल पे क्रॉस बैठे हुए थे। तो ज़ेलेंस्की साहब ने कहा कि मेरा कैलॉग साहब के साथ बहुत अच्छा जो है वो बातचीत हुई है और जो है लास्टिंग पीस के लिए हम इधर काम करना चाहते हैं, और इसके लिए भी कि आइंदा से कभी भी जो रशिया है वो वॉर नहीं शुरू कर सके। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में फॉरेन मिनिस्टर्स का G20 मीटिंग जो है जी वो शुरू हो गया है, और ये सारे जो रिफ्ट्स हैं यूक्रेन का वॉर है मिडिल ईस्ट के क्राइसिस है उसके ऊपर बात की है। 19 कंट्रीज जो है वो G20 में है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी इसमें है जो कि 85% ऑफ द ग्लोबल GDP या कि 3/4 ट्रेड जो है उसको ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनके वॉर्स जो है की इश्यूज पे चल रहे हैं इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज। साउथ अफ्रीका के पास इस वक्त G20 का प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा जो है उन्होंने कहा जी कि हमको अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर मल्टीलैटरलिज्म और जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक हमको सारे फैसले करने चाहिए, हमको जो है बिल्कुल एक गर्भ की तरह चिपक के रहना चाहिए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे मार्को रूबियो वो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं इनका जो एजेंडा है डायवर्सिटी इक्विटी और इंक्लूजन का, आपको पता ही है कि अभी बहुत सारा उन्होंने खत्म किया है ये DEI का जो डिपार्टमेंट है वहां पे अमेरिका में, उनको कुछ इतना अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने कहा जी इसलिए तो इसीलिए G20 का आज का ये जो मीटिंग था जोहानिसबर्ग में उसमें अमेरिका नजर नहीं आया। ये एक बहुत ही बड़ी स्केथिंग रिपोर्ट आई है जिसके अंदर लोगों को कैसे कैसे स्कैम किया जाता है और उनको गलत कामों में डाला जाता है। आज तकरीबन चाइनीज गवर्नमेंट जो कि थाई गवर्नमेंट और म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही थी 1000 चाइनीज नेशनल्स को उन्होंने रेस्क्यू किया है फ्रॉम ऑनलाइन स्कैम सेंटर्स जो कि म्यांमार में चल रहे थे अंडर एन इंटरनेशनल क्रैक डाउन ऑन इलीगल ऑपरेशन, थाउजेंड्स ऑफ अदर जो फॉरेनर्स हैं उनको भी रिलीज किया गया है, क्योंकि उनको जो है ल्योर किया जाता था कि तुमको बहुत खूबसूरत कोई लड़की मिलेगा रोमांस के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, और इनको फिर जो है झूठे वादों के ऊपर थाईलैंड लाते थे और फिर ट्रैफिक करते थे म्यांमार के अंदर। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस 120,000 जो लोग हैं वो वर्क करते हैं ऑनलाइन स्कैम सेंटर्स में म्यांमार में, और 100,000 काम करते हैं कंबोडिया में, और थाउजेंड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में भी काम करते हैं। आज जनाब मेलकम एक्स जो हैं उनको, जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, उनको याद किया गया था। 60 इयर्स हो गए हैं जब उनको असैसिनेट किया गया था ऑन February 21st, 1965 इन न्यूयॉर्क सिटी। बहुत बड़े जो थे वो स्पोक्स पर्सन थे, नेशन ऑफ इस्लाम की बात करते थे, और ब्लैक जो कम्युनिटी थी उसको बोलते थे कि तुमको अपने सिविल राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ जो था उनका अलहदा हो गए थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि रेशियल यूनिटी इस मुल्क में होना चाहिए, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। इनकी उम्र सिर्फ 39 ईयर्स थी जब इनको गोली मार दी गई थी, और ये बोलने के लिए जा रहे थे ऑडोबॉन बॉल रूम में अपर मैनहट्टन में, तो तीन लोग जो थे फिर उनको पकड़ा था। उनमें से एक जो था मुजाहिद अब्दुल हकीम, उसने तो एडमिट किया था कि उसने गोली मारा इनको, लेकिन दूसरे जो लोग थे मोहम्मद अजीज और खलील इस्लाम, वो कहा उन्होंने कि हम इन्वॉल्व नहीं है, और 2021 में फिर उनको एक्सोनरेट कर दिया गया था। इनका फैमिली जो है अभी एक लॉ सूट लेकर आई है, और उसने कहा जी कि FBI को और दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मालूम था कि इसको जो है गोली मार देंगे या इसको जान को खतरा था, लेकिन फिर भी इसका जितना पर्सनल स्टाफ था सिक्योरिटी का उस सबको अरेस्ट कर लिया था इन लोगों ने, और इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया उसका सिक्योरिटी और इसीलिए उसको असैसिनेट किया। तो हमको लगता है कि गवर्नमेंट का इसके अंदर हाथ है अलेजली, और उन्होंने एनकरेज किया ये शूटिंग, और अब ये इसको कवर अप कर रहे हैं। तो आज बहुत ही फैमिली ने के जो लॉयर की तरफ से जो लॉयर है उन्होंने, वैसे तो फैमिली ने ये लॉसूट जो थी नवंबर में लास्ट ईयर ही डाली थी, लेकिन आज उसके डिटेल्स फिर से सामने आए हैं। हमने आपको थोड़े दिन बताया था पहले जी कि जो मोदी जी की मुलाकातें हुई हैं ट्रंप साहब के साथ, उसमें मोदी जी काफी लेट गए ट्रंप साहब के सामने। तो अभी ट्रंप साहब ने उनको बोला था जो भी आपका नीड्स होएगा वो वी विल टेक केयर। उसी सिलसिले की आज जो पहली बड़ी खबर है जिसमें कि ट्रंप साहब ने मोदी जी को बोला था कि आपको नहीं लेना है अब ऑयल एंड गैस जो है रशिया से, उसके सिलसिले में आज पहला कदम जो है वो रखा गया है। यूएस जो है वो अब चाहता है कि अपना एनर्जी पॉलिसी जो है जियो पोलिटिकल गोल्स के लिए करे, और जाहिर है कि चाइना को भी काउंटर करना चाहता है, और उसके लिए बेस्ट जो है वो इस वक्त इंडिया है। आज इसीलिए उन्होंने कुछ तो कहते हैं बैक चैनल कुछ बातचीत हुई है जिसकी की वजह से इंडिया यूएई के बीच में एनर्जी एलएनजी गैस इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, और ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं एट द ट्यून ऑफ $13 बिलियन, जिसके के अंदर यूएस एनर्जी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत बड़ा रहेगा। और ये जो अग्रीमेंट था वैसे ये लास्ट वीक ही हो गया था जब अमेरिका की वो सारी बातचीत आई थी एडनॉक गैस और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में। इस सिलसिले में जो एडनॉक है यानी अबू धाबी नेशनल जो कंपनी है वो इंडिया को देगी 1.2 मिलियन मैट्रिक टन्स पर ईयर ऑफ एलएनजी, और इसके फर्स्ट डिलीवरीज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 2026 में। तो बिल्कुल ट्रंप साहब चाहते नहीं है कि ये रशिया से कुछ भी ले या चाइना से कुछ भी ले इंडिया जो है, तो इसलिए उसको अब ये फैसिलिटेट ऐसे कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है जी उन्होंने आज एक नया इनिशिएटिव ओपन किया है केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स, और उसके लिए उन्होंने बोला है जी कि ये एक ट्रांसपेरेंट और एफिशियंट स्पीडी जस्टिस जो है प्रोवाइड करेगा। ये कहते हैं जी CAMS जो सॉफ्टवेयर है उसका डिजाइन ही ऐसा किया है कि वो एफिशिएंट तरीके से ट्रैक करेगा, ऑर्गेनाइज और मैनेज करेगा इंडिविजुअल केसेस को, और सिस्टमैटिकली असाइन करेगा केसेस टू रेलेवेंट पर्सनल ताकि इसका जल्दी से इन लोगों को सर्विस दिया जा सके। ये जो सॉफ्टवेयर है ये लगाया जा सकता है फॉर द रेजोल्यूशन इन कस्टमर सर्विस एंड लीगल प्रैक्टिसेस, हेल्थ केयर, सोशल वर्क। और वो कहते हैं जी बहुत अरसे से लोग कहते थे कि जस्टिस जल्दी नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से अब ये चीजें जल्दी एड्रेस होंगी। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला है जी कि उन्होंने एक्यूज किया है इमरान खान को कि ये जो है मिलिट्री को अपना एक जो है वो सब्सिडरी बनाना चाहता है पार्टी का। उन्होंने आज मीडिया को बताया कि पीटीआई का जो प्रायोरिटी है वो पर्सनल इंटरेस्ट है, नेशनल वेलफेयर नहीं है, और इसकी वजह से जो पार्टी है उसके अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता जा रहा है, क्योंकि उनको अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है तो उनसे ये प्रोग्रेस देखा नहीं जा रहा है, तो इसीलिए जो है अब जो उन्होंने अब जख्म दूसरों को लगाए थे अब वो अपने खुद के जख्म जो है उसको लिख कर रहे हैं। पीटीआई के जो लीडर्स हैं आज उनका मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही आफरीदी के साथ हुआ है और उन्होंने कहा जी कि ये जो जुडिशरी के मसले हैं इसको आप सॉल्व करो, खासतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट पैकिंग सिस्टम्स हैं उनको आप जरा देखो। इन्होंने जो अभी थोड़े दिन पहले नए जजेस का अपॉइंटमेंट आया था उसकी वजह से बहुत ज्यादा ना सिर्फ पीटीआई बल्कि जो चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने भी शोर मचाया था और उनको कहा था कि आप अभी होल्ड करो ये अपॉइंटमेंट्स जब तक कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का चैलेंजेस जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता है। पीटीआई ने इससे पहले भी कहा था सीजेपी को कि आप इसको अभी पोस्टपोन करो, लेकिन सीजेपी ने ये आइडिया सारा जो था इसको रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा जी कि पहले सिर्फ 12 केसेस पर डे सुप्रीम कोर्ट सुनता था और अभी ज्यादा जजेस के होने की वजह से 30-40 केसेस पर डे जो है ये सुन रहे हैं। पीटीआई ने इसके ऊपर बहुत अलार्म जो है वो जाहिर किया और उन्होंने कहा जी कि ये जुडिशरी को पॉलिटिकल गेम्स के लिए यूज किया जा रहा है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज एक जो प्रेसर किया उसके अंदर मीटिंग के बाद उन्होंने कहा जी कि एंटायर जुडिशियल सिस्टम जो है उसको एक मजाक बना के रख दिया है। दिली जरदारी जो हैं उन्होंने बोला जी कि मेरी मदर जो थे लेट बेनजीर भुट्टो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी थे और वो कहते थे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज और कोई पर्सनल वेंडेटा इसमें नहीं होना चाहिए। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो बात कर रहे थे एंड ही वाज डिलीवरिंग द लेक्चर एट एनुअल बेनजीर भुट्टो मेमोरियल और उन्होंने कहा जी कि 48 ईयर्स पहले बेनजीर ने हिस्ट्री क्रिएट की थी कि वो शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल एशियन प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन और फिर वो शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू लीड पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री। तो ऑक्सफोर्ड यूनियन ने भी कहा कि हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उनका जो एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस और उनका लेगेसी जो है उसको ट्रिब्यूट देने के लिए ये हमने ऑर्गेनाइज किया है। केपी के जो कैबिनेट है उसने जनाब आज अप्रूव किया है रीनेमिंग पिशावर का अरबाब नियाज स्टेडियम टू इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम और इसका तो उन्होंने बात पहले ही किया था और कहा था कि इमरान खान साहब ने जो पिविटल रोल प्ले किया इन शेपिंग नेशन स्पोर्ट्स लैंडस्केप उसके लिए तो उनको कुछ जो है वो ट्रिब्यूट देना ही पड़ेगा और आज चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने जो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का समरी आया था उसके ऊपर सिग्नेचर किया। इंडियन अथॉरिटीज जो है जी अब बहुत ज्यादा जो है अंडर स्कैनर आ गया है क्योंकि उसकी वजह क्या है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि मेरे पास जो लेटेस्ट डॉज की रिपोर्ट आई है डिपार्टमेंट ऑफ जो है गवर्नेंस एफिशिएंसी का जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ऑफ यूएस एड जो है वो इलेक्शंस में इंडिया में खर्च हुआ है, जिसके के ऊपर ट्रंप साहब ने बहुत गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा इसको यूज किया था वोटर टर्नआउट इन इंडिया में, तो ये पैसा किधर किधर जा रहा है यूएस एड का भाई, ये किधर खर्च हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा जी कि मैंने एलॉन मस्क को इस डिपार्टमेंट में लगाया ताकि ये जो जाया होता जा रहा है पैसा सारा अमेरिकन गवर्नमेंट का ये किधर जा रहा है। इसके ऊपर अब जाहिर है हूं कैनेडा तो है नहीं सी जरा इंडिया कह दिता खली वली चुप रहो तुम्हारा बात नहीं मान रहे हैं ये सब ऐसे ही है, अब तो ये अमरीका है। अब इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल साहब उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा ही जो है वो कंसर्निंग है कि फॉरन इंटरफेरेंस अगर जो है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में आ रहा है और रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज है यानी कि जो इनके जो रॉ है और बाकी के इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको अब बोला कि इस मैटर के अंदर देखें। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान में काफी पॉलिटिकल स्टॉर्म जो है वो क्रिएटेड रहा। बीजेपी ने जो है कांग्रेस के ऊपर एतराज किया और कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर एतराज किया कि तुम पैसे ले रहे थे, दूसरा कहता था तुमने ये पैसे लिए और तुमने ये जो है इंटरफेरेंस जो है ये यूज किया। काफी आज झगड़ा रहा। अच्छा और इसके बीच में इंडियन एक्सप्रेस जो इनका न्यूज पेपर है उसने तो अपना एक नया ही राग लापा, उन्होंने तो एक और ही ड्रामे की स्टोरी छापी। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की बोल रही है कि ये मैटर सीरियस है हम इसमें देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस कह रहे हैं जी ये पैसा तो हिंदुस्तान में आया ही नहीं है, ये तो हमारा यूज हुआ ही नहीं है, ये तो बांग्लादेश में यूज है। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। गोदी मीडिया सलाम है आपको, ठीक है। और जो अमरीका में जो बैठे हैं वो तो पागल है और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी पागल है। हाँ अरे आप ठीक हो। एनीवेज जनाब, अच्छा जनाब ये हमने आपको कोई साल पहले स्टोरी बताई थी कि जो दुनिया का सिर्फ एशिया का या इंडिया का नहीं दुनिया का जो सबसे बड़ा स्लम है वो धारवी में है, हिंदुस्तान में है ना, राइट इन द हार्ट ऑफ मुंबई। तो ये धारवी का जो स्लम है एक्सक्यूज मी महाराष्ट्र में इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है नवंबर 2022 को अदानी ग्रुप को दिया गया था कि यहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्सेस और ऑफिसेज और मॉल्स और जो लग्जरी होम्स है आप ये बनाओ और ये सारे का सारा स्लम का जो लोग है इसको हम किसी दूसरी जगह पे करेंगे तो दूसरी की तरह दूसरा भी स्लम कोई होएगा नया स्लम लॉर्ड होएगा उधर ही करेंगे भरल उधर करेंगे। अब ये प्राइम लोकेशन जो है दिस इज क्लोज टू बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जहां पे के बहुत टॉप जो कॉरपोरेशन है उनके हेडक्वार्टर्स है और जाहिर है कि इसमें अब लंबे पैसे कमाने हैं अदानी ग्रुप ने। थाउजेंड्स ऑफ टेनेंट्स जो हैं उनको अब साथ वाला जो डीओनर का जो डंपिंग एरिया जहां पे के कचरा डाला जाता था अब उधर जो है इसको शिफ्ट किया जाएगा और जो है ये यहां पे जो धारवी के अंदर 1,00,000 स्ट्रक्चर है जिसके के अंदर होम्स हैं बिजनेसेस हैं जैसे कि लेदर गुड्स का क्लोथ्स का रिसाइकलिंग प्लास्टिक का। अदानी ग्रुप को दिया गया है 1500 एकर्स टू डेवलप और ये जो है इसके अंदर जो थे ये सबसे हाईएस्ट बिडर थे और आमिर साहब इन्होंने बिड कितने की थी आप सोच सकते हैं 2022 में जो हाईएस्ट बिड इन्होंने की थी 5,000 करोड़ और ये तो छोटी बात है। आपको मालूम है मुकेश अंबानी ने जो इन्वेस्टमेंट का बोला है वेस्ट बंगाल में आमिर साहब कितना बोला है उन्होंने मुकेश अंबानी ने जो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट किया भी हुआ और कितना है 50,000 करोड़। यस यू हर्ड मी राइट 50,000 करोड़ का वो बोल रहे हैं मुकेश अंबानी कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा अभी और भी वेस्ट बंगाल में पहले भी किया हुआ उन्होंने तो ये 5,000 वाकई फिर छोटा थोड़ा फिगर नजर आ रहा है। ठीक है जी तो सोचो जरा दो इन दे बंदे सारी दुनिया अभी दुनिया ने खरीद सकते हैं ये मतलब है कि अन्नी पाई इनमें किधर से आ रहे हैं ये पैसे और कौन दिला रहे हैं ये पैसे और किसने दिखाए हैं ये पैसे और कितने लाए हैं ये पैसे है जी तो बहुत पहे हैं बहुत ही पहे हैं जो है। अच्छा जनाब सेशंस कोर्ट जो है इस्लामाबाद में सॉरी इस्लामाबाद में नहीं मुंबई में उसने अपहोल्ड किया है कन्वेंशन आदित्य पंचोली 59 ईयर्स के हैं इन 2005 पार्किंग असॉल्ट केस लेकिन जो इनको 1 साल का जेल दिया था मैजिस्ट्रेट ने उसके ऊपर इन्होंने कहा कि ठीक है इनको जेल जाने का जरूरत नहीं है लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा जी कि आप अपना गुड बिहेवियर शो करो और सिर्फ 15,00,000 रुपए जो है वो जो असॉल्ट किया था विक्टिम प्रतीक पशीन उसको आप दे देंगे अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट तो फिर ठीक रहेगा। इंडिया की जो आइकॉनिक मूवीज है लाइक मदर इंडिया अमर अकबर एंथोनी देवदास दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसको अब स्क्रीन किया जाएगा एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स इन लॉस एंजलिस दैट्स प्रेजेंट इन इमोशन इन कलर क्लेरोस्कोप ऑफ इंडियन सिनेमा जिसको कि क्यूरेट कर रहे हैं 12 आइकॉनिक मूवीज के लिए और ये वहां पे लगाया जाएगा इसका एग्जीबिशन मार्च 7 से अप्रैल 19 के बीच में। आ जाइए जनाब नई मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी कुछ इसका इतना अच्छा रिव्यू नहीं आया है ये कॉमेडी होना चाहिए था इसके अंदर है भूमि पदनेकर राकुल प्रीत सिंह और अर्जुन कपूर तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों लड़कियों ने तो बहुत अच्छे एक्टिंग किए हैं लेकिन ये टू मच है कि 40-40 गुंडों को अकेला मार रहा है और फिर अचानक से ये लोग पहुंच जाते हैं स्विस एल्प्स में और गाने का तो कोई कनेक्शन कुछ नहीं है लॉजिक नहीं है लेकिन कुछ तो हिस्सा इंटरेस्टिंग है लेकिन लड़कियों में ये लड़का फिट नहीं हो रहा है ये मूवी के अंदर यानी कि लड़का फिट नहीं है अभी आप जबरदस्ती घुसाओगे किसी को तो भैया वो कैसे चलेगा है ना ऐसी है। अच्छा जी टूडो साहब के जो बड़े बेटे हैं जेवियर जी उन्होंने अपना गाना रिलीज किया है बेबी वी कुड मूव इन स्लो Till Night's Done और ये इसका मूड जो है R&B ट्रैक्स की तरह है जिसने इवोक किया है कैनेडियन म्यूजिशियंस का जैसे कि ड्रेक एंड जस्टिन वीवर है इसका इसको रिलीज किया है इसको रिकॉर्ड किया है अंडर द नेम जैव और इसके अंदर जो एडिशनल वोकल्स दिए हैं इनकी छोटी बहन एला ग्रेस ने दिए हैं और इसको तमाम ही बड़े जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक सबके ऊपर जो है अभी ये नजर आ रहा है। एंड जनाब द बिग न्यूज इन फोर नेशंस फेस ऑफ ट्रॉफी जो थी उसके अंदर जनाब कॉनर मैकडेविड ने किया आखिरी गोल कनेडा की तरफ से और 3-2 से जिताया यूएस की तरफ से। ट्रूडो साहब ने एक्स के ऊपर कहा यू कैन टेक आवर कंट्री एंड यू कैन टेक आवर गेम इसके साथ साथ जो एंथम यहां पे गा रही थी सिंगर शैंटल क्रीविट्सगुक वो जो है उसने कुछ चेंज किया वर्ड्स इसके अंदर कनेडियन एंथम के लिरिक्स के अंदर जिसमें कि उन्होंने ओ कनाडा जब गाया तो उसके अंदर जब आया ऑल ऑफ अस कमांड की जगह उन्होंने कहा ओनली अस कमांड तो ऐसा मजा आया फिर है जी और ट्रंप साहब चुप से बैठे हैं नहीं नहीं बहुत कुछ बोला उन्होंने। अच्छा जनाब रायन रिकल्टन जो है उनका मेडन जो आज ODI टन था और एक फायरी 50 था बाय एडन मार्कम. उसने हेल्प किया साउथ अफ्रीका को टू अमैस 315 फॉर 6 अगेंस्ट अफगानिस्तान इन थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी मैच एट नेशनल स्टेडियम बैंक स्टेडियम. और इनका स्टार्ट जो था बहुत बुरा था जब मोहम्मद नबी ने टोनी डी जोर्सी को आउट कर दिया था 11 के ऊपर विद जस्ट 28 रन ऑन बोर्ड. लेकिन उसके ऊपर बाद फिर बावुमा ने ज्वाइन किया रिकल्टन को मिडिल के अंदर और जो है अपनी रिकवर की और इन दोनों के बीच में 107 रन का पार्टनरशिप रहा जिसने के नहीं इनके बीच में जो पार्टनरशिप रहा उसकी वजह से 107 रन से ये लोग जीते अगेंस्ट अफगानिस्तान. अफगानिस्तान सिर्फ 208 बना सका इन 43.3 ओवर्स. शाहिद अफरीदी साहब जो है उसने कुछ एडवाइस दिया है जनाब अभी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को और उन्होंने कहा जी कि आप राइट पीपल एट द राइट पोजीशंस लगाओ. अरे शाहिद अफरीदी पूरे मुल्क में ही राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस नहीं है, हर कोई बाप बना बैठा हुआ है. ये कैसी बातें आप कर रहे हो, मोहसिन नकवी को क्या आप दे रहे हो? तो वो कह रहे जी कि अगर आपका टीम का स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो फिर आपको राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस लाना पड़ेगा. आप कंसल्ट करो सीनियर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स के साथ टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल क्रिकेट और आपका फोकस जो है वो स्ट्रांग सिस्टम को बिल्ड करने में लगा रहना चाहिए. और बहुत ज्यादा आपको लोग नहीं चाहिए, 5-6 चाहिए, लेकिन मैक्स आप 10 रख सकते हो. लेकिन सारे एक्सपीरियंस्ड लोग रखो जिनको क्रिकेट के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में मालूम है. एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट शेन वॉटसन. उसने जो है वो कहा कि मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसको चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी नहीं हरा सकेगा. हालांकि उसके बहुत सारे जो की प्लेयर्स हैं वो वहां पे नहीं है और जो बॉलिंग स्क्वाड है उसके अंदर भी बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन फिर भी जब उनसे पूछा गया कि कौन सा प्लेयर स्टैंड आउट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में तो उन्होंने कहा ग्लेन मैक्सवेल. हालांकि वो पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा था लेकिन अभी मुझे लग रहा है उसकी चीजें सेटल हो गई है तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया के जीतने में पिविटल पार्ट प्ले करेगा. और जनाब अब हम जा रहे हैं अपने स्पेशल क्रिकेट के सेगमेंट की तरफ और आज हमारे साथ जुड़े हैं अमिताभ सक्सेना, ऑनलाइन स्पोर्ट्स एडिटर हैं वीकली वॉइस के साथ एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल कि हम जब भी उनको बुलाते हैं वो बड़ा प्यार दिखाते हैं और हमारे साथ आ जाते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं. आप उनको इसलिए पसंद करते हैं कि बहुत ही मजाकिया अंदाज में वो जो है थोड़ा टेंस भी जो मैच होता है एट क्रिकेट का उसको ले जाते हैं. तो आइए हम उनसे बात करते हैं. हेलो अमिताभ, कैसे हो आप?
एकदम ठीक नाजिया, कैसे आप?
बस बिल्कुल ठीक. अरे आप तो ये बिल्कुल वो स्टाइल बना लिया नेताजी का, ये तो नेताजी बने खड़े हो, ये क्या चक्कर है?
ये कौन सा ऐसा नेता आपने कहाँ देख लिया जो?
अरे ये देखो तो सही, हाई नेक पहने और ऊपर जैकेट वैकेट लगाया हुआ है तो लग रहा है शेरवानी जैसे है या क्या है.
आपने तो मेरा पूरा भ्रम तोड़ दिया. मैं सोच रहा था कि मैं स्टीव जॉब बन के आया हूँ, आपको बुला कुछ.
नहीं नहीं स्टीव जॉब भी हो लेकिन स्टीव जॉब लग रहा है जैसे उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है तो ऐसा लग रहा है हमको. अच्छा सर कैसे हो? ठीक हो?
एकदम ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक.
अच्छा सर एक तो कल के मैच का बताइए और फिर उसके बाद जो भी कल आने वाला मैच है उसके बारे में जरा बताइए, थोड़ी टिप्पणी दें.
बिल्कुल विस्तार से बातें होंगी शाजिया, पर उससे पहले एक मैच की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जो कल रात खेला गया था.
हाँ.
लेकिन वो क्रिकेट का मैच नहीं था, वो
हॉकी.
हमें कह रहे चुप से बैठे हुए हैं ट्रंप साहब आज सुबह से.
अच्छा
हाँ, अमर को अंदर की खबरें आती है ना, वो काले कोट वाले इसको अंदर की खबरें देते हैं लागे.
खोए खोए से लगते हैं हुजूर आजकल. हाँ,
बिल्कुल खोए खोए अचान.
तो शाजिया जी ये जो मैच था उसको मैं मतलब बहुत लेट हुआ था तो सुबह उठ के मैंने रिजल्ट देखा और मेरे जहन में एक ही बात आई थी कि जो बॉलीवुड की पिक्चर बनी थी काफी फेमस लगान.
हाँ.
है ना,
मैंने आपका वो ट्वीट देखा है. यस
आपने देखा होगा शायद. हाँ. मैंने ट्वीट किया था. हाँ मेरे जहन में यही बात आई थी कि जैसे लगान में आमिर खान का कैरेक्टर भुवन और उसके जो साथी होते हैं दे स्टैंड अप टू अ बुली हु ट्राइज टू बुली देम एंड वो दुगना तिगना लगान भी लगाता है जो कि यहाँ पे टेरिफ होते हैं. हाँ. हम सब बोल रहे हैं लेकिन दे स्टूड अप टू हिम एंड दे डिफीटेड हिम अल्टीमेटली. सो मेरे दिमाग में ये आई थी कि नो दिस इज वॉट लगान इज प्लेइंग आउट बिटवीन यूएसए एंड कैनेडा एंड वी नो हुज हू इन दैट.
अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने आपका देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो था आपका जो था ट्वीट था और फिर जो आपने जैसा पिक्चर डाला हुआ था, अरे वाह बहुत मजा आया देख के उसको. यस
और एक चीज इसी टॉपिक पे शायद आई नो क्रिकेट का शो है लेकिन यू नो वी वर ऑल सो इमोशनली इन्वॉल्व इन यस्टरडेज मैच एंड इन्वेस्टेड. तो मेरे को ये लगा कि यार ये तो मतलब इनको पाकिस्तान और इंडिया के फैंस से सीखना चाहिए कि कैसे बिहेव करा जाता है.
अरे कैसे क्या बिहेव करते हैं ये लोग, तो अपने टीवी तोड़ देते हैं.
नहीं, लेकिन देखिए एक दूसरे, कितना भी हम लोग पैशनेट होते हैं और थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो जाती है, लेकिन एक दूसरे की नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट की तो मैंने कभी वारदात सुनी नहीं है कि
सर गले लगाते हैं एक दूसरे को, बड़े गले छले लगाते हैं।
हाँ, और अभी जो फैंस का जो बिहेवियर है, दे शुड, आई थिंक बोथ यूएस एंड कैनेडा शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ आवर प्ले बुक एंड एंड शो द वर्ल्ड की कैसे कैसे यू नो कीप योर पैशंस आर इंटैक्ट बट बिहेव लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स।
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए ना, थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए आपको। हाँ, आप देखो मैं तो कभी भूल नहीं सकती हूँ कोहली का, जैसे वो अब खेल रहे थे जब दुबई में और 10 विकेटों से हार गए थे, लेकिन फिर भी कोहली कैसे गया सबके जैसा के जाके, कैप्टन था उस वक्त और गले सबसे मिल रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक कैप्टन का कैसा दिल में रहा होगा, लेकिन फिर भी तो दैट मेक्स कोहली सच अ ग्रेट मैन, यू नो, इसीलिए हम उसको इतना एडमायर करते हैं, इसीलिए ये मुझे बोरी में डाल डाल के इधर मारते हैं।
That's exactly what it is. People take their cues from their leaders and वो sports में होंगे या politics में।
बिल्कुल।
तो in that I think USA has been found wanting. Canada तो फिर भी they've been pretty decent about everything.
Yeah, yeah.
But US का जो है, जो big boss जो आ गए हैं वहाँ पे नए वाले,
हाँ,
काफी हंगामे किए हुए हैं। खैर, चलिए क्रिकेट की बात करते हैं। शारिया जी, पूछिए आप क्या पूछ रहे
हैं। हाँ जी, तो मैं पूछ रही थी कि जो कल मैच हुआ है, एक बड़ा ही तबाही कुन इंडिया का और एक कल जो होने वाला है, तो दोनों के ऊपर जरा टिप्पणी दीजिए।
अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की मैच के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कल मैच है वैसे?
जो नहीं, संडे की बात करेंगे हम उनका, इंडिया पाकिस्तान के मैच का, लेकिन जो अभी कल इंडिया ने खेला है पहले तो उसकी बात बताइए।
राइट, कल का मैच शाजिया, आई वॉच्ड इट ऑलमोस्ट टू द फुल एंड इट वॉज अ डिसेंट मैच। हालांकि ऑन पेपर वी सॉ दैट इंडिया वन कम्फर्टेबली बाय 6 विकेट्स एंड अबाउट 4 ओवर्स टू स्पेयर, बट ऐसा नहीं था कि मैच में टेंसनेस नहीं थी, काफी टेंस हो गया था मैच, स्पेशली जब इंडिया के 3 विकेट रिलेटिवली जल्दी गिर गए थे, यू नो, कोहली, अक्षर एंड श्रेयस अय्यर, तो और उनके स्पिनर्स काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। 228 का टारगेट भी लग रहा था कि एक विकेट और या एक दो विकेट और एंड इट कुड हैव गॉन आइदर वेज, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड केएल राहुल एंड शुभमन गिल ने बड़ी बड़ी मुस्तैदी से बैटिंग को संभाला एंड दे द मेन थिंग वाज दे कैरिड द टीम ओवर द लाइन, दे डिडंट लीव इट फॉर एनीबडी की एल्स की मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो बंदे काम खत्म करेंगे, मेरे को ही करना है, मैं ही करूंगा, आई डू इट, आई कैरी द टीम टू द पास द विक्ट्री लाइन। सो दैट वॉज अ बिग पॉजिटिव कि जो नए नए बच्चे जो आ रहे हैं, हालांकि राहुल पुराने हैं, लेकिन शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड दे आर पुटिंग देयर हैंड्स अप इन क्रूशियल सिचुएशंस। दैट वाज द की टेक अवे फॉर मी फ्रॉम यस्टरडेज गेम।
अरे, ये मेरे फेवरेट स्टार कोहली को इतना जल्दी क्यों आउट कर देते हैं भाई, ये क्या तकलीफ है इनको, मुझे इनका ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आप जरा किंग कोहली के बारे में बताइए कि उसका क्यों इतना खराब पैच चल रहा है।
खराब पैच में क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस ही चल रहा है शाजिया, मतलब गेम बंदा तो वही है, ऐसे तो उसका नहीं होगा कि कि कुछ उसको किसी ने श्राप राप दिया होगा कि भैया आपकी सारी पावर चली जाएंगी आईसीसी टूर्नामेंट में, वी नो दैट कि वो नहीं होता है भाई, तो
मुझे तो लग रहा है किसी से श्राप आ गया उसके ऊपर। सर क्या है ये, मेरा फेवरेट प्लेयर इतनी जल्दी आउट कर देते हैं आप लोग, क्या है ये?
स्पिन नहीं खेली, स्पिन खेलना ही भूल गए लगते हैं कोहली, और स्पेशली फिंगर स्पिन जो लेग स्पिन होती है, जैसे आप देखिए कि अभी इंग्लैंड का के साथ जो वनडे सीरीज हुआ था उसमें, और वनडे से पहले टी20 सीरीज, उसमें राशिद अली ने बहुत परेशान किया था, राशिद खान ने, सॉरी,
राशिद खान, या
हाँ, और कल के मैच में रिशाद ने परेशान किया, दोनों एक ही प्रकार के बॉलर्स हैं, लेकिन कोहली साहब उनको समझ ही नहीं पा रहे थे। ही ट्राइड टू फाइंड हिज फॉर्म बैक, यू नो, पहले बहुत संभल के खेल रहे थे एंड देन इट वाज टाइम फॉर हिम टू ओपन अप, तभी आउट हो गए, ही वाज आउट, ही कुडंट रीड द बॉल बेसिकली, अगर आपने देखा उनका डिसमिसल, ही ट्राइड टू फ्लिक इट बट द बॉल केम ऑन टू हिज बैट लिटिल फास्टर देन ही थॉट एंड देन कैच उड़ गया एंड देन ही गॉट आउट। ही मेड 22 ऑफ 38 बॉल्स, यू नो, और बड़े प्लेयर्स के बारे में यही कहते हैं कि अगर आपने 15 से 20 रन बना लिए तो देन यू गो ऑन टू मेक अ बिग स्कोर. तो बट कोहली के साथ ये नहीं हो रहा है. हम लोग देख रहे हैं कि 40, 50, 60 में ही इज गेटिंग आउट रेगुलरली. दैट इज यू नो ही नेवर यूज टू डू दैट. एक बार सेटल हो गया तो ही वुड गो ऑन टू विन द मैच और सेटल द इश्यू.
तो मुझे लग रहा है कि ये कोहली और बाबर आजम बिल्कुल प्यार में भाई भाई खेल रहे हैं. यही हाल कुछ बाबर आजम का लग रहा है. तो अभी ये संडे के मैच का, असल में क्यों मैं कल क्यों बोल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी जो वहां पे मिडिल ईस्ट है वहां पे लोगों के ऑलरेडी ट्वीट आ रहे हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज मैच एंड ऑल दैट. तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था. मैं सुबह से सोशल मीडिया देख रही थी क्योंकि वहां पे तो अब दिन आ रहा है. तो संडे का जो अब मैच आने वाला है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सर उसके बीच में क्या फायरवर्क्स होने वाले हैं? जरा कुछ आप अपना पेपर पे कौन स्ट्रांग लग रहा है जरा बताओ.
फायरवर्क्स तो आजकल होते नहीं है, बट हाँ एक 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 मैं शाहिद अफरीदी को कोट करना चाहूंगा यहाँ पे. कल मैं एक स्टार स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम देख रहा था जो इसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खास बनाया गया है. तो उसमें शाहिद अफरीदी से पूछा था कि अगर आप बाबर आजम को कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो आप क्या एडवाइस देंगे, वट मोर और वट कैन यू डू टू यू नो टू इम्प्रूव हिज गेम और टेक पाकिस्तान टू ग्रेटर हाइट्स. तो शाहिद अफरीदी का आंसर वॉज वेरी प्रॉम्प्ट. ही सेड और एक ही बात बोली थी कि मैं बाबर को ये कहूंगा कि भाई मैच जिताया करो पाकिस्तान के लिए. यू प्ले फॉर विनिंग द मैचेस फॉर पाकिस्तान, दैट्स अबाउट इट. बी एन इम्पैक्ट प्लेयर, डोंट बी अ प्लेयर हु मेक्स सेंचुरीज अगेंस्ट डिफरेंट अपोनेंट्स इन डिफरेंट ग्राउंड्स, बट अल्टीमेटली द टीम लूज इट. दैट डजंट सर्व एनी वन. सो इफ यू हैव टू मेक एन इम्पैक्ट, इफ यू हैव टू बी अ ट्रूली ग्रेट लीडर, यू प्ले टू विन द मैचेस फॉर पाकिस्तान. आई थिंक दैट वॉज अ वंडरफुल एडवाइस.
तो बताइए, वही मैं पूछ रही थी जो कि पेपर पे कौन स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके?
I will not be politically correct this time, Shazia.
नहीं, मुझे तो लग रहा है इंडिया जीतेगा. वैसे मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि पेपर में काफी मुझे तो स्ट्रांग लग रहा है. अब आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं मालूम.
आई थिंक क्रिकेटिंग लॉजिक तो यही कहता है कि ऑन पेपर इंडिया इज लुकिंग मोर देन स्ट्रांग शाजिया, बिकॉज वी पाकिस्तान टीम में इतने सारे नए प्लेयर्स आए कि काफी सारों के बारे में तो those who are not following cricket closely पता ही नहीं है. तो बहुत सारे नए और इंडिया की टीम का है, यू नो मोस्ट ऑफ द प्लेयर दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4-5 इयर्स नाउ. कंसिस्टेंसी है, उनकी जगह भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, हालांकि एक दो प्लेयर्स फ्लोटर्स होते हैं. सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस. देर इज अ सेटल्ड लुक टू टीम इंडिया, वेर देर इज अ टोटली अनसेटल्ड लुक टू पाकिस्तानी टीम. दैट आई थिंक इज अ मेजर डिफरेंस एंड दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंसेज एंड द रिजल्ट एज वेल. दैट इज माई रीड ऑफ द मैच ऑन संडे.
अच्छा, ये जस्ट वी ऑन द लाइटर साइड, कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें कोई कह रहा था कि पाकिस्तान अपने ही मुल्क में होम कंडीशंस में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड हो गया है पाकिस्तान में, क्योंकि ये लोग ट्रायल सीरीज के लिए भी आए थे जो पाकिस्तान को पहला मैच हटाया है. तो अभी तो दुबई भी होम सीरीज हो गया इंडिया पाकिस्तान के लिए, तो उस कंडीशन में तो अब दोनों को एडजस्ट हो जाना चाहिए. फिर भी जो वहां का जो होम कंडीशन है वो कितना इफेक्ट करेगा किस टीम को, ज्यादा या कम?
होम कंडीशन, हाँ, दुबई इज लाइक अ होम स्टेडियम फॉर पाकिस्तान ऑल्सो. काफी टाइम तक खेलते आए और पहचानते हैं ग्राउंड को एंड एवरीथिंग. बट वही है, न्यूजीलैंड को एडवांटेज यही मिला है. एंड आई एग्री विद दैट टू एन एक्सटेंट की बिकॉज एक्लिमेटाइज ऑलरेडी हो चुके हैं टीम न्यूजीलैंड वाले. 4-3 मैचेस की जो ट्रायंगुलर सीरीज जो उन्होंने जीती पाकिस्तान को ही हरा के, तो उसका उनके कॉन्फिडेंस वगैरह पे असर तो पड़ा ही है. प्लस एक चीज जो हुई है शाजिया, विच सम पीपल हैव नोटिस एंड मेनी पीपल हैव नॉट, कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो स्पिन को बाकी टीमों के बैट्समैन से बहुत ही बेहतर खेल रहे हैं आजकल. आप विल यंग को ले लें, उनके कैप्टन को ले लें, केन विलियमसन तो है ही, और भी उनके 3-4 प्लेयर्स हैं जो स्पिन को बहुत ही बेहतरी से खेल रहे हैं.
ठीक है,
तो है ना.
अच्छा, आज शेन वॉटसन साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा. ऑस्ट्रेलिया का कुछ इतना अच्छा तो जो है वो परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही. तो आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इस दफा शायद अगेन पेपर पे न्यूजीलैंड ज्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे. तो आपको क्या लग रहा है?
न्यूजीलैंड अभी इट्स टू अर्ली शाजिया, पहले सेमीफाइनल तक पहुंचे अभी बड़े सारे कुदरत के निजाम बाकी हैं.
सर कैसे हैं? सर आमिर बात कर रहा हूँ. और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो क्रिकेट लॉजिक यही कहती है कि इंडिया की टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो सर इंडिया पाकिस्तान जब भी खेलते हैं तो उस वक्त देर इज नो लॉजिक, ओनली मैजिक, ओनली मैजिक। अब वो मैजिक
खिड़की से बाहर कूद जाता
वो सर, वो पानी भरने चला जाता है सारा लॉजिक वॉजिक ये सब कुछ, चाहे बड़े से बड़े प्लेयर खड़े हों पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों, हमने हर दौर में देखा है कि हमने हराया भी है बहुत अच्छे उससे मार्जिन से और हारे ऐसे हैं कि बस दिल करता है कि खुद कहीं जो है ना पानी डूब जाए, लेकिन वो मैजिक एलिमेंट जो है वो रहेगा कुदरत का निजाम। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे जब एक चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही थी, अफगानिस्तान को काफी नंबर्स दे रहे थे और बहुत से लोगों ने इसमें प्रेडिक्ट भी किया था कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक जाएगा, लेकिन अभी कल मैच जब उनका हुआ साउथ अफ्रीका के साथ तो वो एक बॉडी लैंग्वेज या एक होता है टीम के अंदर जो स्पार्क था इससे पहले भी वर्ल्ड कप में, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा कि प्लेयर थके हुए हैं या उनके अंदर वो स्पार्क नहीं है जो इससे पहले हम जो है देखते रहे। क्या पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेला, हार गए लेकिन बहुत क्लोजली जो है वो लेकर गए थे, लेकिन यहां उनको वो स्पार्क नजर नहीं आया अफगानिस्तान का।
राइट राइट, नहीं मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं आमिर कि अफगानिस्तान की टीम को का बिल्डअप बहुत अच्छा था और स्टैट्स के अनुसार वर्ल्ड T23 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 5 बायलैटरल सीरीज खेले और उसमें से 4 वो लोग जीते हैं, तो परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी रही हैं और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं उनकी काइंड ऑफ बॉलिंग जो है जो स्पिन डिपेंडेंट है उसको काफी हेल्प करेंगी। हालांकि बैटिंग में अभी भी उनके ओपनर्स के बियॉन्ड उनका मिडिल ऑर्डर काफी सस्पेक्ट है और हुआ भी वही, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर ओपनर्स। जहां दूसरी टीम ने एक तो विशाल बड़ा स्कोर बनाया आज साउथ अफ्रीका ने, दे बैटेड रियली वेल टू पोस्ट आई थिंक 315 एंड जवाब में एक बार ओपनर्स उनके आउट हो गए जल्दी से, तो आई थिंक हौसले उनके वहीं पस्त हो चुके थे, तो दैट वॉज अ मेजर रीजन। और जो जहां तक टायर्ड लुक देखने की बात हो रही है, आई थिंक दे डोंट प्ले टू मच ऑफ वन डे क्रिकेट एंड टेस्ट मैचेस, सो उनका जो स्ट्रेंथ है वो T20 में ही है, जैसे कि हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप के सेमीज में भी पहुंचे थे वो लोग पिछली दफा जब जो वेस्ट इंडीज में हुआ था, एंड देयर गुड प्लेयर्स आर प्लेइंग इन T20 लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड।
बिल्कुल,
तो आई थिंक थोड़ा सा जज्बे की कमी लगती है मेरे को और टायर्डनेस इसीलिए बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट लीग्स, सो दैट इज माय नॉन टेक्निकल रीड ऑफ द सिचुएशन।
अच्छा एक और बात कर लेते हैं, आपको नहीं लगता कि T20 के बाद जब ये ODI मैचेस की सीरीज हो रही जा रही है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, तो थोड़ा सा मोमेंटम जो प्लेयर्स हैं जाहिर है T20 खेल के उनका एक अलग मोमेंटम बन जाता है। दूसरी तरफ अब जैसे ही आप ODI में आते हैं तो चाहे पाकिस्तान हो जाए, ठीक है इंडिया भी है अफगानिस्तान भी है, वो उस तरीके से खेल पेश नहीं कर पा रहे, या तो खेल खेल के T20 इतनी हो गई है दुनिया भर में, टेस्ट खत्म होता जा रहा है तकरीबन बहुत ही कम हो गया और ODI भी कम हो गया आपको मालूम है, तो क्या ये भी एक इफेक्ट है कि उनका जो माइंड सेट है वो 20 ओवर्स पर सेट हो गया?
मोस्ट डेफिनेटली दैट इज अ मेजर रीजन, बिकॉज आप भी देखें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें
जी,
तो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी आज से करीबन 8 साल पहले 2017 में,
2017 जी
है ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी का मेरे को लगता है कि इट इज नोबडीज चाइल्ड। जब ICC को लगता है यार थोड़े पैसों की कमी हो रही है कुछ कराते हैं तो फिर वो बोलते हैं अरे क्या करना है, बोलते हैं भाजी वो चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी है क्या करना है उसका, तो फिर वो बोलते हैं डालो इसको बाहर थोड़ा धूप वूप दिखाओ करते हैं कुछ, तो दैट इज अ मेजर रीजन बिकॉज आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैज प्रीटी मच मूव्ड पास्ट वन डे क्रिकेट। टेस्ट मैच है अभी भी रेलिवेंट बिकॉज उसमें उसके चाहने वाले और जो प्योरिस्ट है वो अभी भी लाइक करते हैं टेस्ट मैचेस को, ODI ब्रिंग्स इन द नंबर्स फैमिलीज ऑल द हंगामा एक्साइटमेंट, बट वन डे क्रिकेट जो है वो इट्स डाइंग अ स्लो डेथ एंड ICC के बियॉन्ड आई थिंक उसका रेलिवेंस भी काफी कम हो गया है। जब ICC ट्रॉफी में ODI का कप और चैंपियनशिप होती है उससे पहले थोड़े बहुत बायलैटरल सीरीज खेले जाते हैं ताकि मैच रेडीनेस और थोड़ा सा मतलब मेंटली आप तैयार हो जाएं कि भैया 20 का नहीं आपको 50 ओवर का मैच खेलना है, दैट्स अ बिग रीजन कि आजकल स्पेक्टेटर्स नहीं है, इट्स नॉट ब्रिंगिंग इन द मनी, सो ODI क्रिकेट इज बीइंग ट्रीटेड अ लिटिल अनफेयरली आई वुड से।
अच्छा अभी बांग्लादेश का ये जो अफगानिस्तान का बात हो रहा था अमिताभ, तो इसमें आपको पता ही है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले जो है जो इंग्लैंड और वेल्स क्लब जो बोर्ड है उसने बोला कि हमको बहुत सारे ऐसे जैसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमको नहीं खेलना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वो लड़कियों के लिए की जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर बहुत सारा ये जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने वो बेटा, फिर वो राजी हो गए, कहने लगे नहीं हम खेल लेंगे। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस तरह का फीलिंग आ गया है जो इनके अंदर गोरा लोग के अंदर कि अफगानिस्तान तो कुछ इतना लड़कियों के लिए कुछ वो नहीं कर रहे हैं तो हमको नहीं खेलना है, तो कुछ ऐसा आपको लगेगा कि कोई मैचेस में भी इस तरह की कुछ रिफ्ट सी नजर आएगी या जरा जैसे बदमजगी होती है ना, बहुत खुशी खुशी नहीं खेलेंगे दोनों टीम्स, ऐसा कुछ?
मुझे नहीं लगता शायद कि ऐसा मैच के दौरान ऐसा कुछ होगा। ये सब चीजें आर नॉट समथिंग विच अ स्पोर्ट्स पर्सन वुड बी हैंडलिंग। जब वो मैदान में उतरते हैं तो उनको खाली एक जीत का वो मोटिव होता है, तो प्लेयर्स विल नॉट बी परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली कि क्या पॉलिटिकली और इसमें क्या चल रहा है। बट हाँ, इम्पैक्ट तो होता ही। आपको अगर ध्यान होगा कि थोड़े एक डेढ़ साल पहले अफगानिस्तान का एक टूर होना था ऑस्ट्रेलिया में, एक तो उनको टूर बहुत कम मिलते हैं ऐसी कंट्रीज में, एक उनका टूर पूरा निश्चित हो गया था कि टेस्ट मैच होगा और सम अदर मैचेस, लास्ट मिनट में बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम द टूर वॉज कॉल्ड ऑफ। तो ये जो दूसरी कंट्रीज है ये प्रेशर बनाते हैं कि भाई पॉलिटिकल डिस्पेंशन जो भी है अफगानिस्तान में कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि थोड़े से अपने तरीके चेंज करें, लेकिन वो उसका असर ग्राउंड पे होगा ऐसा मैं नहीं समझता। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर।
अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का मैच सुबह यहाँ पे 4 बजे शुरू होगा, आप कितने बजे उठने वाले हो?
मैं उठूंगा शाजिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उठूंगा 3:15।
अरे क्यों सारा इसी तरह कोट वोट पहन के नहा वहा के बैठना है?
देखिए कोई एनालिसिस नहीं होगा उसके, तो आई वांट टू बी रेडी राइट, पूरा एकदम फिजिकली मेंटली, तो फिनिश ऑफ ऑल द मॉर्निंग एवल्यूशंस, कॉफी वॉफी बना के एंड आराम से सोफे पे पैर रख के, एंड आई वांट टू वॉच इट फ्रॉम बॉल 1 बिकॉज उसका एक्साइटमेंट थोड़ा मजा है अपना ही रहता है।
तो साथ में आपका संडे का दिन खराब गुजरेगा इसलिए कि जो भाभी जी है वो तो बहुत ही नाराज होने वाले हैं कि भाई हिल जाओ कुछ काम कर लो, तो आपको तो कुछ काम नहीं उस दिन करना है।
हाँ नहीं नहीं, तो स्पोर्ट्स तो है, तो स्पोर्ट्स का पैशन तो ऐसे ही होता है ना, यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट, तो वो आपको खुशी और गम एक 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 साथ मिलते हैं, मतलब एक ही दिन में आप खुशी भी कुछ भी हो जाते हो इतने अच्छी तरह। So yeah, that's what it is. Or India Pakistan, so we have so many memories and you know पूरा मतलब पूरी हिस्ट्री है हमारी, आजकल तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है, पहले तो काफी देर यूज टू बी बैड ब्लड एज वेल, बट आई डोंट थिंक देर इज एनी बैड ब्लड।
बॉयज के बीच में कभी भी बैड ब्लड नहीं था, बॉयज के बीच में नहीं था, ये तो लीडर्स के बीच में था
माहौल। हम लोग तो सोसाइटी ऐसी है ना शादियां, जिस माहौल में रहते हैं आप उससे एस्केप तो नहीं कर सकते, तो अखबारों में आ रहा है सोशल, पहले उस जमाने में तो सोशल मीडिया नहीं होता था, तो अखबार और रेडियो वगैरह टीवी में जो आता था उसी से हम लोग अपना वो अपने रिएक्शन बनाते थे। आजकल तो सोशल मीडिया है लेकिन लोग भी और बहुत इंटेलिजेंट हो गए, दे आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स कि ये एजेंडा वाले हैं या जेन्युइन फैंस हैं, ये क्या खेलवाना चाहते हैं या इट्स ऑर्गेनिक। तो आई डोंट थिंक फैंस आर इम्पैक्टेड। हाँ, टीम हारती है, किसी से भी हारे, अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया से हारेगी थोड़ा ज्यादा दुख होता है, लेकिन किसी से भी हारेगी आपको 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 तो तकलीफ तो होती है कि हमारी टीम क्यों हार गई, बट दैट पासेज, एक दिन के बाद यू रियलाइज कि ये तो इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, एज लॉन्ग एज प्लेयर्स आर पुटिंग इन एफर्ट तो हार जीत इज पार्ट ऑफ द गेम। आई थिंक द ट्रू फैंस बिलीव दैट, ये नहीं कि ऑनलाइन जाके आप ट्रोल कर रहे हो किसी के रिलीजन के बारे में, किसी की मैरिटल स्टेटस के बारे में, ऑल दैट इज बीएस।
ठीक है ठीक है।
अच्छा सर, कल क्या खत्म कर रहे हैं, तो कल का भी मैच होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो आपकी टेक और आपकी टीम?
मेरे ख्याल से जो ये दो जो टीम है दे आर द मोस्ट डिसइंटरेस्टेड टीम्स इन ओडीआई, जैसे आपने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले देखो अच्छा इसका आईपीएल शुरू होने वाला है भाई इसको माफ कर दो।
हाँ।
तो उनके 3 मेन बॉलर्स तो आए नहीं है जो वर्ल्ड बीटर,
उनको इनवाइट कर दिया गया।
फॉर वेरियस रीजन, और इंग्लैंड की भी आप टीम देखे तो वो भी ऐसी है, जो इंडिया अभी तो टीम आई थी उनकी T20 की भी सेम टीम थी और वनडे की भी उनकी सेम टीम थी, तो उनका इन्वेस्टमेंट इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, तो आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू द मोशन कि चलो जीत गए देखते हैं, लेट्स प्ले कपल ऑफ मैचेस एंड सी वेयर वी लैंड, सेमीफाइनल में आ गए फिर वील स्टार्ट पुटिंग इन सम एफर्ट, अगर हार गए तो नोबडी इज गोइंग टू बैट एन आईलेट कि भैया क्यों हार गए क्या करने गए थे वहां पे।
करें,
दे आर गोइंग थ्रू द मोशन, दैट इज माय रीड ऑफ द सिचुएशन. मैच मेरे को लगता है कि बिकॉज इंग्लैंड अभी सब कॉन्टिनेंट में खेल के गया है, इंडिया पाकिस्तान की पिचेस हम जानते हैं करीबन एक सी होती है, तो इंग्लैंड इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पिचेस. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने भी श्रीलंका में मैचेस खेले थे जो वो हार गए थे सीरीज 2-0. But I would put my if I was a betting man, I would say that England has a better
England जो है वो ज्यादा अपर हैंड है उसका.
राइट.
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं आपको, क्योंकि एक दो मिनट तीन मिनट ही हमारे पास. चार टीमें वो गोल्डन कौन सी होंगी?
चार टीमें ग्रुप वाइज जाते हैं,
ग्रुप वाइज ग्रुप एक ही बात कर लें कि कौन सेमीफाइनल खेले यहां से निकलेगा.
हाँ जी, इंडिया पाकिस्तान, हालांकि अभी नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को हमेशा लगता है कि सेमीज तक तो पाकिस्तान आएगी.
ठीक है.
और पर मेरे जैसे बताया कि कुदरत का निजाम बोलो या प्लेयर्स का जो आत्मसम्मान होता है, यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट, यार ये क्या हो रहा है, वी कैन नॉट बी, स्पेशली बिकॉज ये पूरा टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में खेला जा रहा है, तो एक अलग जज्बा होता है कि आपकी आपके देश में मैच खेला जा रहा है. यू हैव टू गिव दैट हैप्पीनेस टू योर सपोर्टर.
एज अ होस्ट कंट्री जो है वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है.
यस यस यस. तो इंडिया पाकिस्तान, हालांकि अगर न्यूजीलैंड दूसरा मैच जीत जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान में से एक ही आ पाएगा. तो इंडिया पाकिस्तान एंड देन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, दोज वुड बी माय फोर सेमीफाइनलिस्ट.
बिल्कुल सर. और मेरा एज एन पाकिस्तानी अगर मैं कहूंगा तो ऑफकोर्स पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा रहेगा कि इंडिया पाकिस्तान आ जाए, लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो मेरी अपनी एज एन क्रिकेट फैन से पूछे तो न्यूजीलैंड इंडिया मुझे लगता है कि यहां से आ जाएंगे. और वहां से आपने बिल्कुल सही कहा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आधी से ज्यादा जैसे कहा आपने कि वो आए नहीं है, उनके कोई ना कोई मसाइल रहे, तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका एक अच्छे फॉर्म में, उनके अंदर एक नई टीम बिल्ड हुई है, उनके अंदर वो जो एक एनर्जी है वो नजर आ रही है साउथ अफ्रीका की टीम में.
राइट. तो और आप देखिए आमिर, आज का मैच जो जीता है
बिल्कुल,
आज कैप्टन नहीं खेले,
315 रन बनाकर और 208 रन पे आउट कर देना, तो वो एक टीम मोमेंटम उनके अंदर नजर आ रहा है और सारे प्लेयर मिलकर खेल रहे हैं.
हाँ, और हालांकि आज क्लासन नहीं खेले थे जो उनके बेस्ट बैट्समैन.
यस, क्लासन.
ट्रिस्टन स्टब्स भी नहीं थे.
जी बिल्कुल.
ठीक.
तो या
चलिए ठीक है. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अमिताभ. इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. और आपके साथ जो बात रहती है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है. तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर से जुड़ेंगे. तो जो है आप थोड़ा अपना वो कॉफी का मग वग पकड़ के रहना, हो सकता है नेक्स्ट वीक की कुछ डिस्कशन जो है थोड़ा सा टेंस हो जाए. तो ठीक है. तो फिर
मैच भी अच्छा होगा, एज लॉन्ग एज इट्स अ गुड गेम. और एक चीज जो हो रही है इस वर्ल्ड इस टूर्नामेंट में शायद कि मैचेस आर ऑल बीइंग वन साइडेड. एक टीम करीबन अच्छा स्कोर बना लेगी 300 या 300 के बियॉन्ड, एंड द अदर टीम वुड काइंड ऑफ स्प्लटर अलॉन्ग और 250-300 के पास जाके फुस हो जाती है. तो अभी तक थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा. होपफुली कल या डेफिनेटली संडे से तो द मैच द टूर्नामेंट विल हैव अ डिफरेंट वाइब टू इट.
बिल्कुल सी.
वो इंडिया पाकिस्तान ही ला सकता है ना.
बिल्कुल सी. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉमेंट्स और फॉर योर एनालिसिस. और हम अब नेक्स्ट वीक आपके साथ जुड़ेंगे. सो दिस इज ऑल द टाइम दैट वी हैव टूडे. बाय फॉर नाउ.
बहुत शुक्रिया सर. और ये थे हमारे साथ अमिताभ जी. और जाहिर है संडे का देर इज नो लॉजिक, ओनली मैजिक. तमाम फैन जो
तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे.
नहीं, सूरत नहीं, यहां तो पूरी रूह आ गई. तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा. और जैसे अमित जी ने कहा वो भी सुबह 3:15 उठ जाएंगे.
हाँ.
तो मेरा भी अलार्म कुछ ऐसी सुबह 3:15 का होगा, 3:30 का.
इतनी जल्दी तुम लोग क्या नहा धो के कपड़े बूट शूट पहन के बैठना चाहते हो भाई?
यही फैन है क्योंकि भाई सारा दिन.
अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है कौन जीतेगा इंडिया पाकिस्तान में?
पाकिस्तान.
मुझे लग रहा है इंडिया जीतेगा.
सुने जी, साइन ऑफ करते हुए पाकिस्तान जीतेगा.
दो दिन की छुट्टी मेरी.
नहीं, आपकी 2 दिन की वैसे ही छुट्टी है.
अच्छा
ठीक हो गया. चले जनाब, अब हमारा अगला सेगमेंट होगा अजान का. तो याद दीजिए सभी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का. इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहीं तो आपसे मंडे मुलाकात होगी. तमाम सामईन का, नाजरीन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का. 6478724900 डायल करके आप हमारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं. इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com और हमारा टेलीविजन eawaz TV, तमाम IPTV बॉक्स मौजूद है. पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आरफा मुजफ्फर साहब की तरफ से, माजिद जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे. मैं आपका होस्ट आमिर अहमद. इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही. तो मंडे फिर मुलाकात होगी. उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम.
ٹورانٹو اور گردونوا کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا, تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ صلاه